प्रातः क्लास चल रहा था 10/11/1966 सातवें पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी कि तीन सेनाएं दिखाई गई हैं महाभारत महाभारी युद्ध में, पांडव कौरव और यादव। पांडव पंडा पुत्र, पंडा है भगवान के घर का रास्ता बताने वाला, उसके पुत्र पांच दिखाए गए हैं अर्थात उंगलियों पर गिने जाने योग्य, और कुरु अक्षर संस्कृत का है, कुरु के बच्चे हैं कौरव। ये कौरव हिंदी अक्षर है, कौ माने कौआ, रव माना शोरगुल, जो कौओं की तरह भाषणबाजी का शोरगुल ही करते रहते हैं। और निरीह प्रजा को भरमाते रहते हैं। जैसे कौ कौआ को कहा जाता है, ऐसे ही उनके संगठन का नाम है कांग्रेस, काव काव करने की रेस। जैसे तुलसीदास ने कहा है, पंडित सोई जोई गाल बजावा, उनकी दौड़ है भारत भाषणबाजी की। और कांग्रेस का राज्य है ही प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। जहां न कोई राजा है न कोई बाजा है, ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य तो हो। कायदे के बरखिलाफ है, ईश्वरीय कायदा है, राजाओं का राज्य। राजा स्वतंत्र होता है, किसी के बंधन में नहीं होता। तो भगवान बाप ने आकर के जो राजाई स्थापन की थी राजयोग के द्वारा, वो स्वतंत्र राजाएं बनाए थे। इसलिए भगवान बाप कहते हैं, मैंने तो यहाँ भारत में राजधानी स्थापन की थी, राजाओं की धारणा शक्ति को राजधानी कहा जाता है। देखो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, वहाँ कोई प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य नहीं था। जब प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है तो इसको कोई सावरंटी थोड़े ही कहा जाता है, इसको किंगडम नहीं कहा जाता है। ये तो पंचायती राज्य हो गया। अभी है ये पंचायती राज्य, और ये सब प्रजा ही प्रजा हैं। तो ये पांच पंचों का राज्य है, राजाई कैसे चलाएंगे? आपस में देखो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये हुई पंचायत, जो बैठते हैं फैसला करने के लिए। ये पार्लियामेंट के एमपीज, एमएलए आदि की पंचायत है ना। देखो आपस में ये पंच लड़ पड़ते हैं, अच्छे अच्छे बड़ों बड़ों से भी लड़ पड़ते हैं। देखो अभी बड़ा पंच होम मिनिस्टर लड़ पड़े, तो उनको पंच की कुर्सी से उतार देते हैं। पंच पंच को उतार देते। देखो क्या हालत हो गई है, समझने की बातें हैं। और बाप तो अभी बैठे ही हैं सब बातें समझाने के लिए। बताते हैं इसको कहा ही जाता है पंचायती राज्य। जहाँ कोई एक धनी दोरी तो होता नहीं है, भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कराते हैं। रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, उस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जहां आखिरी पुरुषार्थ करने वाले बड़ा ब्राह्मण नंबरवार राजाएं प्रत्यक्ष होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग की राजाई स्थापन करते हैं। राजा होता है तो राजा की धारण शक्ति भी होती है, रानी कहा जाता है। तो देखो, तुम बच्चों को अभी मैं राजा बनाता हूँ। तुम बच्चों माने जो सामने बैठते हैं उनको कहा जाता है तुम। राजा स्वाधीन होता है, तुम राजा बनते हो। रानी स्वाधीन नहीं होती है, राजा के अंदर भी कंट्रोल होती है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। जिसमें रुद्र के बच्चे जो रुद्रगण कहे जाते हैं वो नंबर बार राजाई का पुरुषार्थ करते हैं। तो राजा का अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। राजा माने कंट्रोलर, ये कंट्रोलिंग पावर भगवान बाप ही आकर के तुम बच्चों को देते हैं। जिसको राजयोग कहा जाता है, ये राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा के और दुनिया में कोई भी धर्मपिता सिखा ही नहीं सकता। सब देह अभिमानी है, कोई भी आत्मा के तंत्र में नहीं रहता। आत्मा का तंत्र अर्थात स्वतंत्रता। आत्मा का तंत्र वही स्थापन कर सकता है जो सदैव आत्मिक स्थिति में रहे और इस दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं। जो सदैव आत्मा के तंत्र में रहे, स्वाधीन रहे, स्व माने आत्मा, आत्मा के अधीन रहे, सब पंचभूतों से बने शरीर के अधीन हो गए हैं। एक भी स्वाधीन नहीं रह पाता। जब ऐसी हालत हो जाती है दुनिया की कलयुग के अंत में, तभी हेवेनली गॉड फादर को आकर के हेवेन अर्थात नई दुनिया, देवताओं की दुनिया रचनी पड़ती है। वहां जो भी देवात्माएं होती हैं, आत्मा के तंत्र में रहती हैं, आत्म की स्मृति में रहती हैं। फिर द्वैतवादी कलयुग से, द्वापर से जो भी देहधारी धर्मगुरु धर्म पिताएं आते हैं, वो सब देवान की पैदाइश करते हैं। देह बनती है पांच तत्वों से, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। द्वापर के आदि से ही ये पंचभूतों की बनी हुई भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है। आखिरीन सारे भारतवासी भी इन विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं और सब भौतिकवादी बन जाते हैं। अध्यात्म क्या चीज होती है किसी की बुद्धि में नहीं आता। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, आत्मा के अंदर की बात किसी को पता नहीं। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये पांच एलिमेंट का ही विश्लेषण करते रह जाते हैं। जो कि ये पांचों तत्व तो जड़ हैं, पंचभूत कहा जाता है। तो अर्थ भी समझना चाहिए ना। राजाओं का, राजाई का क्या अर्थ है? अरे बच्चे, तुम पवित्र थे ना, पीछे देखो, तुम पवित्र को संग के रंग से इन विधर्मियों ने झूठी झूठी बातें सुनाकर तुमको अपवित्र बना दिया। पराधीन बना दिया, भले तुम ही पहले आधा सृष्टि में सतयुग त्रेता रूपी ब्रॉड ड्रामा के दो सीन में पूज्य देवता थे। और फिर तुम द्वैतवादी युग से द्वापर युग से पुजारी बन गए। तो देखते हो सतयुग त्रेता के पवित्र राजा हैं, देवात्मा हैं, और फिर इन द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने से तुम इनकी बातों में आकर के, इनके संग के रंग में आकर के अपवित्र बन गए, विविचारी बन गए, इंद्रियों के दास बन गए। बाबा ने तुम्हें समझाया था ना कि सतयुग के डबल सिरताज थे, पवित्रता का ताज और नई दुनिया की जिम्मेवारी का ताज। जो सेवा तुमने शूटिंग पीरियड में बाप के आज्ञाओं पर अपनाई थी, तो तुमको पवित्रता का ताज भी था शांति का ताज, रतन जड़ित ताज भी होता है ना। देखो अच्छा, फिर तुम जानते हो कि जो राजा हैं पावन थे, ये रावण राज्य के बाद फिर विकारी राजाएं बने, इसे राम राज्य तो नहीं कहेंगे, क्योंकि राम होता है एक सिर वाला। जो यादगार रामलीला में दिखाते हैं, और रावण होता है अनेक सिर वाला। अनेक मतों वाला, अनेक राज्य वाला, अनेक प्रकार की राजाइयों वाला, अनेक अनेक भाषाओं वाला, ये रावण राज्य के बाद फिर भी विकारी राजा हैं। विकारी भी माने विपरीत, कारी माने कार्य करने वाले। भगवान ने जो कर्म का कर्म विकर्म का रास्ता बताया था, उसके विपरीत कर्म करने वाले वो ही विकारी राजाएं अभी भी हैं। कहाँ वो सतयुग के राजा रानी, और कहाँ ये द्वापर कलयुग के राजा रानी कहो, महाराजा महारानी कहो। इन महाराजा महारानी को फिर इतना माथा क्यों मारना पड़ता है? और ये महाराजा महारानी है, तो फिर ये माथा क्यों टेकते हैं? शीश झुकाते हैं ना। देवताओं की यादगार मंदिर बनाकर, इसलिए शीश झुकाते हैं कि खुद पतित हैं, इस पतित पने से तो सिद्ध होता है ना। इनको पवित्रता का लाइट का ताज नहीं है। और जानते हो कि ये सारी दुनिया ही पतित हो जाती है, देवताएं तो पतित नहीं थे। पतित माने गिरे हुए, फिर ये द्वैतवादी युग से क्यों पतन होने लगा? क्योंकि कर्मेंद्रियों में जो मुख्य कर्मेंद्रिय काम इंद्रिय है, उससे शक्ति क्षीण होने लगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही कमजोरी का अनुभव करने लगे। तो देखो यही भारत था जो प्रवृत्ति मार्ग में पावन था, वही भारत राजा रानी महाराजा महारानी यथा राजा तथा प्रजा सब पतित बन गए। फिर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फिर जरूर ये बदली होना चाहिए। तो तुम बच्चे प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे हो, फिर तुमको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला बनाता हूं। द्वापर युग से जो द्वैतवादी धर्म पिताएं आए, दो दो धर्म चलाए, दो दो राज्य बनाए, दो से चार, चार से आठ, द्वैतवादी युग में भाषाएं बढ़ती चली गई, मत मतांतर बढ़ते चले गए। मानवीय कुलों की संख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। प्रवृत्ति को जीवन भर निभाने वाले नहीं थे ये देहधारी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स। आज एक के साथ प्रवृत्ति, कल देखते हैं दूसरे के साथ प्रवृत्ति, पहली प्रवृत्ति को तोड़ दिया, फिर तीसरी प्रवृत्ति, चौथी प्रवृत्ति। आज भी इस्लाम धर्म में मुस्लिम धर्म में चार चार शादियां करने के लिए राजनैतिक छूट मिली हुई है। और फिर क्रिश्चियंस में तो प्रवृत्ति को तोड़ना आम बात हो गई। एक मनुष्य एक स्त्री अपने जीवन में 20 बार प्रवृत्ति को तोड़ती है और 20 बार नई प्रवृत्ति को धारण करती है। तो देखो ये सारी दुनिया पतित व्यभिचारी बन जाती है। तो तुम बच्चों को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला बनाता हूं। अर्थात तुम्हारी सारे जीवन में एक के साथ प्रवृत्ति रहती है। क्या रहती है? प्रवृत्ति। प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, वृत्ति व्रत, जिसकी यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है। स्त्री पुरुष जो हमारे आज माता पिता हैं, सारे जीवन के लिए एक ही प्रवृत्ति में रहे। तो बोलता हूं, तुम बच्चों को खास कि प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। पहले आधा कल्प पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और अभी अपवित्र विविचारी प्रवृत्ति मार्ग हो गया। इन विधर्मियों विदेशियों धर्म पिताओं के संग में आते आते जो गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, जिनका संग करते हैं तो फिर कामना उत्पन्न होती है कि हम भी ऐसे ही करके देखें। तो ये बन जाता है कलयुग के अंत तक द्वापर के आदि से मृत्यु लोक। तुम जब देवलोक में थे तो अमर लोक था, तुम स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ते थे, मृत्यु बरवस तुमको खींच कर नहीं ले जाती थी। अभी मैं आया हुआ हूं, फिर तुमको प्रवृत्ति मार्ग में ले जाते हैं सतयुग में, क्योंकि अब इसे कलयुगी पुरानी दुनिया को आग लगनी है। आग का सारा बारूद इकट्ठा हो गया। क्या है? एटॉमिक एनर्जी के नियम है कि हेवनली गॉड फादर हेवन रचने जब आते हैं, तो पुरानी दुनिया के विनाश का भी साथ सामान इकट्ठा करवाते हैं। आज से 80 साल पहले कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं था कि ऐसी विस्फोटक एटमिक एनर्जी हो सकती है जो सारी दुनिया को थोड़े से थोड़े समय में खलास कर दे। अस्सी साल पहले अर्थात 1935-36 कोई की बुद्धि में नहीं था एटमिक एनर्जी के बारे में। उसी समय जब भगवान बाप आते हैं अपना आत्मलोक छोड़कर सोल वर्ल्ड को छोड़ करके इस भौतिकवादी दुनिया में आते हैं, इस दुनिया को पलटने के लिए, तो पुरानी दुनिया को नष्ट करने वाला सामान भी ईजाद होता है, जिसका पहला परीक्षण 1942-45 के बीच हिरोशिमा नागासाकी पर हुआ। उसी से मैं भगवान बाप ने आकर के ब्राह्मणों की दुनिया भी रची थी और उस ब्राह्मणों की दुनिया में जो हीरे जैसी चैतन्य आत्माएं थीं, वो पहले पहले खलास हो गई। जो इस सारी सृष्टि के बीज हैं, बीज का ध्वंस होगा तो वृक्ष का भी ध्वंस हो जाता है। ১৯৩৬ में जो ब्राह्मणों की दुनिया नई रची गई, बोला कि स्थापना के साथ साथ क्या होता है, विनाश का कार्य भी शुरू हो जाता है। जब भगवान बाप आते तो जिसे कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, और शंकर के नाम के साथ वो टाइटल भी आज तक जुड़ा हुआ है यादगार में, क्या, हर हर बम बम, और साथ में सहयोगी बनती है महाकाली। इसलिए पुरानी हिस्ट्री को उठाकर देख लें, जब भारतवासियों पर विदेशियों के आक्रमण हुए तो भारतवासियों ने आक्रांताओं से जब युद्ध किया तो उनका नारा होता था हर हर बम बम जय महाकाली।
तो देखो स्थापना में भी प्रवृत्ति मार्ग और विनाश में भी प्रवृत्ति मार्ग। इसलिए देखा होगा महाकाली की मूर्ति में मस्तक में कौन दिखाते हैं, चंद्रमा दिखाते हैं। वो माता है कौन, जगदम्बा महाकाली, सात्विक रूप में दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली, और फिर चौथी अवस्था में तामसी स्टेज में महाकाली बनती है। कब बनती है महाकाली? जब माताओं के कंट्रोलर कृष्ण जैसे बच्चे बन जाते हैं। क्या? कृष्ण बच्चे की गीता माता है या पत्नी है? हैं? कृष्ण बच्चे की माता है, गीता पति भगवान कोई और है, परंतु देह अभिमानी धर्म पिताओं ने ऐसी दुनिया बना दी जहां वो ही माताएं जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके ईश्वरीय राज्य की राजधानी स्थापन करने की निमित्त बनी थी। स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनी थी वो ही शिव शक्तियां। आज विदेशियों के संग के रंग में आकर के विदेशियों की सभ्यता को धारण करते करते ऐसी आधीन बन जाती हैं कि अपने ही बच्चों के प्रभाव में आ जाती। कौन से बच्चे? जो विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। उन विपरीत बुद्धियों में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि नहीं, जो चंद्रवंशियों का हेड कहा जाता है चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, वो भी बच्चा बुद्धि होने के कारण धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के प्रभाव में आ जाता है। जो इस संसार की बड़े से बड़ी माँ है ब्रह्म माँ, तो जब बड़ी माँ का ये हाल है तो और इस सृष्टि में जो छोटी बड़ी माताएं हैं नंबरवार, उनका क्या हाल होगा? अपने ही बच्चों के अधीन रहेंगी या नहीं रहेंगी? अधीन हो जाती है। यहां तक अधीन हो जाती है, जैसे पत्नी पति के अधीन रहती है, और वो ना समझे कृष्ण जैसे बच्चे माता के ऊपर आर्डर चलाने लग पड़ते हैं, माताओं को पूरा अधीन बना लेते हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, सभी देशों में ये परंपरा चल पड़ी। की माताएं बच्चों के अधीन हो जाती है, बाप कहते हैं आत्माओं का बाप। कि कृष्ण बच्चे को गीता माता का, गीता पति भगवान बना दिया, अरे ये तो जुल्म हो गया। ऐसा जुल्म जब इस संसार में सारी दुनिया में होने लग पड़ता है, इन देवधारी धर्म पिताओं के प्रभाव में आने से, अब देवधारी धर्म पिता चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि हो, चाहे उन धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स को गोद में पालने वाला ब्रह्मा हो, चाहे चंद्रवंशियों का बाप हो, इस्लामी या बौद्धी या किसी अंश का बाप हो, सब पतन के गर्त में ले जाने वाले हैं। तो उस पुरानी दुनिया को आग लगाने के लिए भगवान बाप यादवों का हेड बन करके इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। यादव इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियंस ये सारे ही विदेशी यादव हैं, जिनकी महाभारत शास्त्र में बड़े बड़े महलमाणियां अटारियां दिखाए गए, बड़े बड़े धनाढ्य थे, बड़े शराबी थे, दिखाया गया कि यादवों के पेट से मिसाइल स्वरूपी मूसल निकले, ये कवियों की प्रतीकात्मक भाषा है। स्थूल पेट से मूसल निकलने की, मिसाइल्स निकलने की बात नहीं, ये तो बुद्ध रूपी पेट है। जिसमें से ये मिसाइल्स का आविष्कार होता है, खास जब हेवनली गॉड फादर हेवन रचने के लिए इस हेल की दुनिया में आते हैं। तब बिल्कुल महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी होती है। मिसाइल्स की लड़ाई या मूसलों की लड़ाई, तो ये लड़ाई तो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। ये अभी तो आगे चलकर फिर बोलेंगे कि अब ये महाभारी महाभारत की लड़ाई लग रही है। यहां से इस लड़ाई से इस महाभारी महाभारत के स्टार्स पात्र एक्टर्स यहां से निकले, यहां से फिरे, ये हुआ वो हुआ, फिर भी ऐसे ही कहेंगे। तो अभी तुम बच्चों को क्या करना है? बाप कहते हैं तुम क्या भी करते हो, क्या क्या भी करते हो मतलब है, अरे क्या भी करते हो मतलब क्या, भले करते रहो, क्या करते हो, अरे करना धरना काहे से होता है, है? कर्मेंद्रियों से। तो तुम कर्मेंद्रियों से भल क्या भी करते हो, कोई भी धंधा दोरी करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते हैं, क्योंकि बाप ने बताया है कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान कैसे रहो, है कमल फूल समान निर्लिप्त रहो, डिटैच रहो, अटैचमेंट में नहीं आओ। अटैचमेंट में आना है तो किसके अटैचमेंट में आना है, है? हाँ शिव बाप या शिव बाबा, हाँ शिव बाबा के अटैचमेंट में आना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बल कुछ भी करते रहो। कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहो और बाप को याद करते रहो। तो ये कमल फूल का निशान, कमल फूल का जो मिसाल है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि कमल फूल ही है जो किंग फ्लावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग फ्लावर। माना तुम कैसे फूल बनने वाले हो, हैं? कमल फूल के समान राजा बनने वाले हो। फिर राजा कौन बनाता है कमल फूल के समान, है? वो ही आत्मा राजा बनाती है जो पूरे 5000 वर्ष इस सृष्टि में आता भी है। पतित तमो प्रधान 5 तत्वों के बने शरीर में आता है, पतित दुनिया में आता है तो भी इस दुनिया से 5 तत्वों से इंद्रियों के व्यवहार में रहते हुए डिटैच रहता है या अटैच रहता है? डिटैच रहता है। हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला ऐसा गुरु मिला है कमल फूल तो देखा है ना बरोबर, देखा, देते भी हैं हाथ में उनको ये कमल फूल के समान वो निशान। परंतु वो देते हैं उनको किनको है? अरे जानते ही नहीं, जानता पार्टी को किनको देते हैं है? जानता पार्टी को। लेकिन वो जानता पार्टी तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में है या शिष्टाचारी गवर्नमेंट में? तुम्हारी तो ईश्वरी है, शिष्टाचारी गवर्नमेंट है। तुमको ईश्वर जानकारी का ज्ञान देता है, उन जनता पार्टी वालों को ईश्वर कोई भी जानकारी का ज्ञान नहीं देता है। तो वो जनता पार्टी वाले या दुनिया वाले उनको वो निशान देते हैं। तुमको नहीं देते हैं क्या कमल फूल का निशान? तुमको नहीं देते हैं, उनको देते हैं। है? क्यों तुमको क्यों नहीं देते? कोई कारण कि तुम आज कमल फूल बनने का पुरुषार्थ करते हो, कमल फूल के समान डिटैच बनने का पुरुषार्थ करते हो, फिर 10 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद या कुछ ही दिनों के बाद वो कमल फूल के समान बदले फिर पतित बन जाते हो, विकारों की कीचड़ में डूब जाते हो। तो वो तुमको निशान नहीं दिया जा सकता, तो फिर तुमको कैसे कमल फूल के समान बनाए देवे हैं? कैसे बनाए देवे? कोई सैंपल तुम्हारे सामने रखें क्या, जिस सैंपल को देख करके तुम बनते रहो है? भक्ति मार्ग में तो सैंपल दिया है, कमल फूल समान स्थिति का यादगार मंदिर में बनाया है, मालूम है कौन सा है? शिवलिंग बनाया है।
जो इंद्रिय जीतना सबके बस की बात नहीं है, बड़ी प्रबल इंद्रिय है काम इंद्रिय, वो काम इंद्रिय को कमल फूल के समान कर्म करते हुए उपराम स्टेज में दिखाया है। काहे से उपराम है? इंद्रियों की स्मृति से उपराम, इंद्रियों से कर्म करते दिखाया गया, लेकिन मन बुद्धि उपराम है या अटैच है? हैं? उपराम है, ये सैंपल है। तो बताया कि तुमको कैसे कमल फूल के समान बनाए देवे, तुम कहेंगे कोई सैंपल हमारे सामने रखा जाए तो देख करके हम भी बनने का पुरुषार्थ करें। तो ब्राह्मणों हैं, ब्राह्मण किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद, और ब्रह्मा की औलाद भी दो नंबर के ब्राह्मण नहीं क्या? नौकुरियों के भक्ति मार्ग में ब्राह्मण गाए हुए हैं। जब दो नंबर के ब्राह्मणों का ही यादगार नहीं है कमल फूल, तो तीन चार पांच आठ नौ नंबर का यादगार कैसे बनेगा? बनेगा है? दुनिया में भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले नौ धर्म हैं मुख्य मुख्य, लेकिन आस्था तो रखते हैं लेकिन भगवान की जानकारी है नहीं है, और तुम बच्चों को भगवान बाप की जानकारी है। तो कमल फूल के समान तुम अव्वल नंबर ब्राह्मणों को कहते हैं, बाकी बाद की कुरियों के ब्राह्मणों को अव्वल नंबर नहीं कहते। मुसलमान लोग गाते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये अव्वल नंबर हुए या बाद वाले नंबर हुए? हैं? बाद वाले हुए। तो तुम ब्राह्मणों को कहते हैं कमल फूल समान ब्राह्मण, वो सब हैं कुखवंशावली। कौन? जो ब्रह्मा की गोद में रहने का, गोद में जाने का फकुर रखते हैं। बड़े उमंगोत्ला उत्साह से बोलते हैं, हमने ब्रह्मा मम्मा बाबा की गोद ली है। तुम तो कल के बच्चे हो, तुमने तो देखा भी नहीं, ऐसे बोलते हैं ना तुमको है? तो गोद ली है
या ब्रह्मा के मुख से निकले भगवान के महावाक्यों को लिया है? गोद श्रेष्ठ है या ब्रह्मा के मुख से निकले हेवनली गॉड फादर के महावाक्य श्रेष्ठ है? तो तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण, जिनको कमल फूल समान ब्राह्मण बनना है। देवताओं को भी कमल फूल समान नहीं कहा जाता, क्यों? उनको ज्ञान नहीं, क्यों? वो इंद्रियों से जो कर्म करते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे दिखाया है, राधा की दृष्टि कृष्ण में जाती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में जाती है, तो क्या वो कमल फूल समान जीवन नहीं बताते हैं? हैं? हाँ, आंखें भी इंद्रियां हैं या नहीं है? हैं? पांच तत्वों से बनती हैं कि बिना पांच तत्वों के बनती है? पांच तत्वों से बनती है, इसलिए इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं। देवताएं भी बल 16 कला संपूर्ण बनते हैं। इंद्रियों का सुख भोगने के कारण पहले ही जन्म में चौथाई कला कम हो जाती है या नहीं होती है? हैं? तो उतरती कला में जाते हैं या चढ़ती कला में जाते हैं? हैं? उतरती कला में जाते हैं। और तुम तुम इस संगम युग में साक्षात भगवान बाप से चढ़ती कला का वर्षा लेते हो। कैसी चढ़ती कला? जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण के ऊपर खड़े हुए लक्ष्मी नारायण की दशा दिखाई गई, क्या साथ साथ खड़े हुए हैं लेकिन न ज्ञान इंद्रियों में न कर्म इंद्रियों में आकर्षण जाता है बुद्धि का? जाता है? नहीं जाता है। पांच तत्वों से बनी इंद्रियों से उपराम, जिसको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। किसकी गोप गोपियां गाई हुई हैं? हैं? भगवान बाप की गोप गोपियां गाई हुई, जिन्होंने भगवान बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़े हैं। दुनिया नहीं जानती कि वो संग का रंग कैसे एक का लगता है, जिससे वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में 21 जन्म के लिए आ जाती है। तो देवताओं का भी ये गायन नहीं है कमल फूल समान जीवन। किसका गायन है? है? तुम बच्चों का गायन है। कैसा जीवन? कमल फूल समान। ये पांच तत्वों से बनी हुई देह और जो देह की इंद्रियां हैं, इनसे मन बुद्धि से उपराम हो जाते हो। जो सैंपल शिव के मंदिर में दिखाया है, दिखा शिवलिंग दिखाते हैं, पूजा क्यों होती है? सारी दुनिया में मंदिर मिल रहे हैं, सारी दुनिया की खास खास जो भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें लिंग मूर्तियों की तादाद सबसे ज्यादा मिली। ऐसी सार्वभौम सत्ता है उसे यादगार की। तो जो शिवलिंग का सात्विक यादगार भक्ति मार्ग के आदि में द्वापर में कहां दिखाया गया था? सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। वो सोमनाथ के मंदिर में लिंगाकार पत्थर था, बड़ा रूप, और सूक्ष्म रूप क्या था? हीरा दिखाया गया था। लिंगाकार पत्थर में हीरा दिखाया गया। तो कोई नहीं जानता, दुनिया में आज तक किसी ने नहीं जाना वो हीरा किसकी यादगार है और वो लिंग किसकी यादगार है। शिव के मंदिर में भक्त जाकर के भक्ति तो करते हैं, लेकिन ये क्या है, क्यों यादगार बना, क्यों इसकी पूजा होती है, जबकि यही कर्म दुनिया का हर मनुष्य मात्र कलयुग के अंत में कर रहा है इंद्रियों से। कर्म तो एक ही है, तो फिर इसकी इतनी पूजा क्यों? हर एक मनुष्य मात्र की पूजा क्यों नहीं? तो महात्माओं ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने न समझ पाने के कारण कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम, यह हम सबकी यादगार है। क्या जो मंदिर में शिवलिंग दिखाया गया, विद्वान पंडित आचार्यों ने क्या समझ लिया, ये किसकी यादगार? हम सब की यादगार है, हम सब आत्मा सो परमात्मा। देखो कैसा अनर्थ कर दिया, जो ऊंचे से ऊंचा भगवान इस सृष्टि में आता है तो हीरो पार्टीदारी में आएगा मुकर्रर रूप से या सर्वव्यापी होकर आएगा? एक में याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी या सर्व में याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी? सारी दुनिया की बुद्धि को बिखराई दिया, सब की बुद्धि चंचल हो गई, मन बुद्धि एक सेकंड भी एक निश्चित स्थान पर टिकती नहीं है। ऐसा अनर्थ कर देते हैं, यहां तक कि मुसलमान जो कहते थे अल्लाह मियां अर्श में रहता है फर्श पर नहीं, वो मुसलमान लोग भी आज क्या कहने लगे है, जर्रे जर्रे में अल्लाह मियां है। जैसे हिंदू कहते हैं कण कण में भगवान, अरे हिंदुओं ने तो और भी सत्यानाश कर दिया। जानवर अवतार भी दिखाई दिए, जानवर भी भगवान के अवतार हो गए। अरे भगवान आएगा तो जानवरों का उद्धार पहले करेगा क्या है? भगवान किस लिए आता है? अरे भगवान निराकार है मान लिया, आत्मा निराकार है तो आत्मा का बाप भी निराकार है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं मान लेना। लेकिन जो आत्माओं का बाप निराकार है उसके पास क्या है? वो आत्माओं का बाप है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, फादर से तो वर्षा मिलता है ना है? जो भगवान बाप बोलते हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, फादर कहे और कभी मिले ही नहीं वो फादर कैसे हो सकता? यहां तक कि सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं चाहे वो नास्तिक रशियन सी ही क्यों न हो, सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं सब से आकर मिलते हैं। तो सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते होंगे ना, नहीं देते होंगे है? अरे सबको आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं? खुद निराकार है, ज्ञान तो सुनाई नहीं सकता, दृष्टि से सर्च लाइट दे नहीं सकता क्योंकि आंखें हैं ही नहीं, तो क्या करता है कैसे करता है? बताया कि वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन मनुष्य आत्मा हीरो पार्टधारी है? जो हीरो पार्टधारी जन्म जन्मांतर सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हुए किसी के अधीन नहीं हुआ, सदा स्वाधीन रहा, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी विश्व विजय के, बड़े बड़े आक्रामक विदेशी हिंदुस्तान में आए और उन्होंने आकर के भारतवासियों को तहस नहस किया, लेकिन भारत से मुंह खा करके गए, भाग खड़े हुए या जीत करके गए है? भाग गए क्योंकि गीता में लिखा है नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य, जो सत्य होता है वो निश्चल होता है, अटल होता है, अचल होता है, वो अचल रहना तुम बच्चों का यादगार है, जो माउंट आबू में आज भी अचलगढ़ बना हुआ है, अटल रहने वालों का किला, गढ़ माने किला। तो तुम बच्चों में ये खासियत है कि विदेशी आक्रांताओं के सामने तुम झुके नहीं। क्यों? तुम्हारा नारा रहा जीवन देह जिसमें जीवन होता है, देहम वा पातयामि कार्यम वा साध्यामि। देह भली छूट जाए, चली जाए, लेकिन कार्य पूरा करेंगे। अर्थात अगला जन्म लेकर फिर ये आत्मा क्या करेगी? अंतमते ये संकल्प लेकर जाती है कि यहां अगर विद्व युद्ध में विजय नहीं होती, मृत्यु प्राप्त होती है, तो भी अगले जन्म में जाकर के युद्ध करेंगे, विजयी बनेंगे और स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तो ये तुम ब्राह्मणों का दायन है, तुम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हो। बीज बाप को कहा जाता है। जो बाप है वो पूरे परिवार में सर्वोपरि है, गाया जाता है, होता ही है। परिवार में सबसे ऊंची सत्ता किसकी होती है? बाप की होती है। तो तुम 500-700 करोड़ की सृष्टि में सारी मनुष्य सृष्टि के बाप हो। नंबर बार तुम्हारी 84 जन्मों में जो भी आत्माएं तुम्हारे संसर्ग में आई हैं, संपर्क में आई हैं, संबंध में आई हैं, उन आत्माओं के तुम रचयिता हो। जब भगवान बाप आते हैं तो उन आत्माओं को तुम उनके स्वरूप का परिचय देते हो कि तुम आत्मा हो, परम पिता के बच्चे हो। कैसे पिता के बच्चे? जिसका कोई पिता नहीं। अपनी भारतीय परंपरा में कोई मनुष्य आत्मा ऐसी है पार्टदारी जिसका कोई बाप नहीं माना जाता, कोई जन्मदाता नहीं, वो कभी मरता नहीं और कभी जन्म कोई से लेता नहीं। कौन है? शंकर के लिए गाया हुआ है। वास्तव में ये गायन तो भक्ति मार्ग वालों ने किया है। शंकर तो देवता है, रचना है या रचयिता है? है रचना है। भगवान की तीन पहली रचना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें से एक प्रमुख रचना है शंकर। परंतु रचयिता रचयिता नहीं है, वो रचयिता तब बनता है जब हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आए करके उसे राजयोग का रास्ता दिखाते हैं। जिस योग के पुरुषार्थ के आधार पर वो ऐसी संपन्न स्टेज प्राप्त करता है जिसे कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा परंतु उसको कोई कोई नहीं काल कबलित कर सकता। अरे उनकी अच्छी बात है, है? अच्छी बात है, सबका विनाश कर देना अच्छी बात है या खराब बात है, है? अच्छी बात है, विनाश करना अच्छी बात है या स्थापना करना अच्छी बात है, निर्माण करना अच्छी बात है या ध्वंस करना अच्छी बात है? मकान बनाने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं या तोड़ने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं, है? बनाने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो जो ब्रह्मा बनता है वो स्थापना करता है, ब्राह्मणों की दुनिया बनाता है, ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया जो ब्राह्मण सो देवता बन जाते। तो कमल फूल समान तुम देवताएं बनते हो। कमल फूल समान रहते रहते देवता बन जाएंगे और नंबर वार ऊंच पद पाएंगे। कैसे पाएंगे? सो इन बातों को बाप आकर के समझाते, क्या करते हैं, समझाते हैं या सुनाते हैं? समझाते हैं, सिर्फ सुनाते नहीं, विराट रूप भी बनाते हैं। तो उस विराट रूप को कोई जानते थोड़े ही हैं, जानते हैं नहीं जानते? तुम बच्चे तो जानते होगे, हैं? कौन है विराट रूप? कब बनता है विराट रूप? संगम पर बनता है, हैं? संपन्न होने पर विराट रूप धारण करता है। जिस विराट रूप में देवताएं भी दिखाए हैं, ऋषि मुनि भी दिखाए हैं, राक्षस भी दिखाए हैं, यहाँ तक कि गीता में बोला है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों ही वर्ण दिखाए हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों युगों की रचना दिखाई है। फिर देखो वंडरफुल बात, इतना सब कुछ दिखाया है फिर भी उस विराट रूप की चोटी को उड़ाई दिया। क्या किया है? विराट रूप की चोटी को उड़ाई दिया, दिखाते नहीं है। ये चोटी कौन है? है कहते हैं जब तुम पूरा ही विकारों की दंदल में डूब जाते हो, क्या तुम सब बच्चे विकारों की दलदल में पूरा ही डूब जाते हो, तब आकर के मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या ऐसे नहीं कान पकड़ के उठाता हूं? सुनने सुनाने वालों को उठा लेता हूं, या सुनने सुनाने वालों में जो दाई ओर का कान है, अच्छी बात है सुनने और सुनाने वाला कौन है? अरे सुनने सुनाने में अव्वल नंबर कौन? कोई नहीं, ब्रह्मा सबसे ज्यादा सुनता है ना? कम सुनता है कि सबसे ज्यादा सुनता है? सबसे ज्यादा सुनता है। और सबसे पहले? सबसे पहले भी सुनता है। सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। सुनता भी बहुत है और सुनाता भी बहुत है। तो मैं कान ऐसे कान को पकड़ करके नहीं उठाता हूं। क्या किसको उठाता हूं? चोटी को पकड़ करके उठाता हूं। अब बताओ ये जो बाहर की जड़ दुनिया है, हद की दुनिया, और जो ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया है, उसमें कोई चोटी है ऊंचे से ऊंची? टांगों से भी ऊपर, पेट से भी ऊपर, सर से भी ऊपर, सबसे ऊंची है? अच्छा हद की दुनिया में बताओ कौन है? अरे अरे हद की दुनिया में ऊंचे से ऊंचे होते हैं पहाड़। कौन होते हैं? पहाड़। और पहाड़ों में भी सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़, जिसे शास्त्रों में वेद की भाषा में नाम दिया है हिमवान, हिमवान राजा, जिसकी पुत्री पार्वती, वेद का नाम चैतन्य नाम दिया, वो पहाड़ जड़। उन पहाड़ों में बड़े पहाड़ का नाम हिमालय, हिम का आलय, हिम माने बर्फ, बर्फ का घर, वो तो हुआ हद का हिमालय। ब्राह्मणों की दुनिया में बर्फ का घर कौन है? है ब्रह्मा बाबा। क्यों है? उनकी खोपड़ी में क्या बर्फ जमी रहती है? है बर्फ नहीं जमी रहती है। जैसे बर्फ है जाम होकर के पत्थर बन जाती है, ऐसे ही ब्रह्मा की बुद्ध रूपी जो धरणी है उसमें पत्थर की तरह ज्ञान जल जमा हुआ है। क्या वो जल लिक्विड हो करके बहता नहीं है? जल जाम हो जाता है तो बर्फ कहा जाता है, लिक्विड हो करके बहता है तो नदी बन जाती है। तो देखो कवियों की भाषा है प्रतीकात्मक। हिमालय राज्य किसको कहा शास्त्रों ने? अरे पत्थर के पहाड़ को हिमालय राज्य नहीं कहा, किसको कहा है? ब्रह्मा वाली आत्मा को ही बर्फ का घर कहा, क्योंकि ज्ञान जल जाम रहता है, बुद्धि चलती ही नहीं। ब्रह्मा की बुद्धि ज्यादा चलती थी कि मम्मा की बुद्धि ज्यादा चलती थी? मम्मा की बुद्धि फिर भी चलती थी, इसलिए मम्मा को ज्ञान की देवी कहा गया और ब्रह्मा को ज्ञान का देवता नहीं कहते। बल ब्रह्मा के मुख से कहते हैं वेदवाणी निकली। विद माने जानना, वेद माने जानकारी, लेकिन वो वेद वाणी को आज कोई सुनता समझता है? न कोई सुनता है, न कोई समझता है, और न प्रैक्टिकल जीवन में चलने की बात। क्योंकि भगवान बाप आकर के 5000 वर्ष के ड्रामा, बड़ा ड्रामा की शूटिंग कराते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा जिसे हिमालय राज कहा, जो कृष्ण की आत्मा है बच्चा बुद्धि, जिस बच्चे को भारतवासी भगवान समझ करके पूजते हैं, उसकी बुद्धि बच्चा बुद्धि होने के कारण जाम रहती है, समझदारी वाली बुद्धि नहीं है। हाँ उस पहाड़ की कोई चोटी है जो दुनिया में सभी पहाड़ों की जो भी चोटियां हैं उन सबसे ऊंची है। कौन सी चोटी है? एवरेस्ट। पूर्वी सभ्यता वाली, पश्चिमी सभ्यता की नहीं, पूर्वी सभ्यता की सबसे ऊंची चोटी। हद में एवरेस्ट शिखर दिखाया गया, वास्तव में जब सारी दुनिया में महामृत्यु के समय जलमय हो जाती है, होती है या नहीं? कैसे? जब बॉम्ब फटते हैं इकट्ठे चतुर्थ विश्व युद्ध में, तो बॉम्ब की गर्मी से जो समंदर का पानी है वो बॉइल्ड वाटर बन जाता है। कब बनता है? जब गर्मी से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो पहाड़ हैं बर्फ के, मीलों ऊंचे पहाड़, वो गर्मी से सारे टूट टूट करके समंदर में आ जाते हैं। तो समंदर का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाता है। और चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि वो पृथ्वी माता की गोद में प्रशांत महासागर में आकर के गिरता है। प्रशांत महासागर में जब चंद्रमा चिपक जाएगा तो प्रशांत महासागर का जल स्तर और ज्यादा ऊंचा उठेगा या नहीं? तो सारी दुनिया में इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि सारी दुनिया के पशु पक्षी मनुष्य सब बोड़म बोड़ हो जाते हैं। डूब जाते हैं, ये कहो डूब मरते हैं। बाढ़ आती है, अरे साधारण नदियों में ही बाढ़ आती है तो पानी कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता या स्वच्छ रहता? क्यों गंदा हो जाता? क्योंकि देह अभिमानी की मिट्टी पानी में मिल जाती है। तो सारे सागर के पानी में देह अभिमानी की मिट्टी अच्छी तरह से घुल जाती है। उस देवहानि की मिट्टी में सारी दुनिया, सारे मनुष्य मात्र महामृत्यु के समय विकारों की दलदल में डूब मरते हैं। भगवान क्या करता है उस समय? है जो चोटी रह जाती है वो नहीं डूबती, वो चोटी को पकड़ करके उठाता है। तो कौन है वो बेहद की चोटी? एवरेस्ट शिखर है? हाँ, जिसको परम पद कहा जाता है, विष्णु नो विषयकाल। कैसा निर्विषयी? जो यादगार में दिखाते हैं सर्पों की इतनी बड़ी शैया पर पड़ा हुआ है, फिर भी बड़े आराम से लेटा हुआ है या घबराहट में है, बेचैनी में है, आराम से पड़ा हुआ है? नहीं तो सर्दियों में किसी की रजाई में एक सांप घुस जाए तो क्या करेगा? है घबराहट में आकर के रजाई वजाई छोड़ छाड़ के भागेगा। और वो क्या करता है? बड़े आराम से पड़ा रहता है, कोई चिंता नहीं। कि वो रचना का संपन्न रूप दिखाया, जिसे विष्णु कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण रचना विष्णु को हो, फिर उसका रचयिता भी कोई होगा या नहीं होगा? है विष्णु साकार में या निराकार में? साकार में, तो रचयिता भी है साकार में, फिर वो कौन? विष्णु के मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर अलग बनाते हैं। जो विष्णु देवता का रचयिता बाप है, जो मनुष्य को देवता बनाने वाला है, नर को नारायण बनाने वाला है, वो कौन है? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, बाबा ही है। शिव बाप को बिल्कुल भुला दिया।
शिव बाप का गेंदा कितने की हो सकते हैं? शिव बाप का गेंदा कितने की हो सकते
हैं? हाँ, क्योंकि शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि न मैं पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। तो जो शिवलिंग है वो आत्माओं के बाप शिव की यादगार नहीं है। न शिवलिंग में जो हीरा जड़ा हुआ है वो भी उसकी यादगार नहीं है, क्योंकि हीरा हो या नौ रत्नों में से कोई भी रत्न हो वो सब पत्थर बुद्धि होते हैं या पारस बुद्धि होते हैं। क्या होते हैं? सब पत्थर बुद्धि। और शिव कभी पत्थर बुद्धि बनता है? है? शिव तो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। तो बताओ वो हीरा किसकी यादगार है? है? हीरा जो साकार में रथ दिखाया गया है, निराकारी स्टेज वाला, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते हैं। दिखाए जाते हैं लिंग को नहीं, तो वो अव्यक्त रूप है, जिसकी इंद्रियां व्यक्त नहीं है, आंखों से देखने योग्य नहीं है। वो लिंग रूप जो साकार रथधारी है, जो मन बुद्धि से आत्मिक स्थिति से देह और देह की इंद्रियों को भूला हुआ है, उसकी वो स्टेज दिखाई गई है। और उस स्टेज में वो रथ के रूप में जो बड़ा लिंग दिखाया गया, उसकी आत्मा भी होगी कि मुर्दा होगा? है? आत्मा होगी या नहीं होगी? वो आत्मा संपन्न स्टेज में दिखाई गई है। वो ही शिव के मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर में पूज्य रूप में दिखाया है। शिव न पूज्य देवता बनता है न पुजारी बनता है। हाँ, वो इस शक्ति पर आकर के पूज्य देवता बनने का रास्ता बताता है। वो आत्माओं का बाप निराकार क्या है? है? लड्डू है, पेड़ा है, जलेबी है, मकान है, दुकान है, बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या है? है? ज्ञान का अखूट भंडार है। कैसा? ज्ञान का अखूट भंडार है। और जो आत्माएं हैं वो अखूट भंडार नहीं है। यहां तक कि मनुष्य आत्माओं का जो बीज रूप बाप है वो भी अखूट भंडार नहीं है। वो भी कोई बात में अज्ञानी हो जाता है, और जब तक पूरी सृष्टि का विनाश न हो, मनुष्य सृष्टि के बाप के सब बच्चों का खात्मा न हो जाए शरीर सहित इंद्रियों सहित, तब तक वो आत्मा इस सृष्टि पर ही रहेगी या चली जाएगी है, इस सृष्टि पर ही रहेगी, नहीं तो वो बाप कैसा बाप जो बच्चों को आग की ज्वाला में जलते हुए बच्चों को छोड़ करके खुद भाग जाए है? भागेगा? नहीं भागना चाहिए। तो वो तो मनुष्य शक्ति का अव्वल नंबर बाप है ना। भगवान बाप खुद आकर के उस आत्मा को चुनता है नई सृष्टि बनाने के लिए। इसलिए पुरानी सृष्टि के ध्वंस और नई सृष्टि की रचना दोनों का कार्य जब तक पूरा संपन्न न हो जाए, उसके बाद भी उस आत्मा को परमधामवासी बनने की जरूरत है, है? नहीं है या नहीं? नहीं बोला है। बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो। अरे तीन तीन को याद करें या एक को याद करें? तो तीन बातें क्यों बताई? हाँ, क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का एक बाप है वही योग की संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर वो हमारा बाप भी है। वो नहीं नहीं वो हमारा बाप भी है, वो हमारा सुख का स्थान भी है। क्या है? वो हमारा चैतन्य मंदिर है। भक्ति मार्ग में जब दुखी हो जाते हैं तो कहाँ भागते हैं? मंदिर की ओर भागते हैं ना। वो तो जड़ मंदिर होता है और ये हमारा चैतन्य मंदिर है, इसलिए हमारा स्वर्ग है। बाप ही हमारा स्वर्ग है, बाप ही हमारा घर है और बाप भी है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला भी है, जीवन मुक्ति का वर्षा प्रैक्टिकल में देने वाला आत्माओं का बाप शिव है या मनुष्यों का बाप प्रजापिता है? धन वाला बाप धन का वर्षा देगा, जमीन जायदाद वाला बाप जमीन जायदाद का वर्षा देगा। शिव बाप कौन सी प्रॉपर्टी का बाप है? शिव बाप निराकार आत्माओं का बाप है। निराकार आत्माओं को निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? निराकारी वर्षा मिलेगा। निराकारी वर्षा है ही ज्ञान, चाहिए या नहीं चाहिए? है चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में कोई भी भक्त ऐसे कहते हैं, हे पतित पावन आओ आओ को आकर के हमको ज्ञान सुनाओ, है ऐसे कहकर बुलाता है? है? नहीं बुलाता है? पतित से पावन बनाने के लिए बुलाते हैं लेकिन ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते। क्यों?
पावन पंडित बन गए हैं, पावन में रहने के लिए बुलाया। हम पंडित बन गए हैं,
पंडित बन गए,
सबको पावन बनाने के लिए बुलाया,
पावन बनाने के लिए बुलाया। हाँ, तो हम पतित बन गए तो पावन बनाने के लिए बुलाया, तो जिसको बुलाया पावन बनाने के लिए वो तो कहता है संग तारे कुसंग बोरे, क्योंकि जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे या नहीं बनेंगे, है वैसे ही बनेंगे और वैसे ही दुनिया में रहना पड़ेगा। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि धर्म पिता हैं, निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? तो निराकार को मानते हैं तो निराकारी धाम में जाएंगे, लंबे समय तक वहां रहना पड़ेगा, या साकारी स्वर्ग की दुनिया में आ जाएंगे? क्यों नहीं आते स्वर्ग की दुनिया में? क्योंकि वो निराकार को याद करते हैं और हम प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे हैं, हम निराकार आत्मा सुप्रीम सोल और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों को याद करते हैं, जिसको कहा जाता है शिव बाबा, साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो वो निराकार आत्मा जो पतित है, पतितम कामी कांटा है, जिसमें मुकर्रर रूप से शिव बाप आते हैं, तो वो कामी कांटा योग बल के पुरुषार्थ से क्या बन जाता है, है? योग योग लगाते लगाते क्या बन जाता है? योगी योगीश्वर, योगियों का ईश्वर, योगियों का ईश्वर शिव नहीं है, है? नहीं, अरे शिव कोई योगी थोड़े ही है, उसे योग लगाने की जरूरत है, है? नहीं, उसको तो योग लगाने की दरकार ही नहीं, वो कभी वियोगी बनता ही नहीं। हम मनुष्य आत्माएं वियोगी भी बनती हैं और योगी भी बनती हैं। उनमें अव्वल नंबर आत्मा है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो संपूर्ण योगी भी बनता है और संपूर्ण भोगी भी बनता है। क्या? संपूर्ण पतित भी बनता है और संपूर्ण पावन भी बनता है। तो जो देह के संग के रंग में आते आते संपूर्ण पतित विविचारी बन जाता है, वही एक की याद से क्या बन जाता है? संपन्न बन जाता है। दोनों प्रकार की ताकत है, नीचे गिरने की भी ताकत सबसे ज्यादा और ऊंचा उठने की भी ताकत सबसे जास्ती। इसलिए बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बोलते हैं? तुम्हारा बाप आया। बच्चे समझते हैं, हाँ शिव शिव बाप हमारा बाप आया हुआ है। अरे शिव बाप बाप नहीं आया हुआ है, वो बाप आया हुआ है जो अच्छे से अच्छे कर्म करने वालों का भी बाप और बुरे से बुरे भयंकर कर्म करने वालों का भी बाप, जिसे भक्ति मार्ग में देवताएं भी मानते हैं, अच्छे कर्म करने वाली देवात्माएं और राक्षस भी मानते हैं, जो बुरे से बुरे कर्म करने वाले राक्षसी कर्म करने वाले हैं वो भी उसे मानते हैं, वो सबका बाप है। क्या देवताओं का भी बाप है और राक्षसों का भी बाप है, इसलिए बोला कि वो देवताओं में भी बड़े से बड़ा क्या है देवता, क्या कहा जाता है महादेव, और राक्षसों के बीच में भी कलयुग के अंत में क्या है बड़े से बड़ा ब्रह्म राक्षस। राक्षसों में सबसे बड़ा राक्षस ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा वाली सोल उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है। कौन सी सोल? ब्रह्मा वाली जो सोल प्रवेश करके उसमें पार्ट बजाती है। जो ब्रह्मा सबसे जास्ती निश्चयानिश्चय के चक्र में आता है, सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आता है, इसलिए जिस वृक्ष पर भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ब्रह्म राक्षस रहता है, वो वृक्ष मालूम है कौन सा है? है नहीं मालूम? पीपल। पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा का झोंका आएगा और जोर से हिलता है, ऐसे थोड़ी सी माया का झोंका आता है और वो आत्मा हिलने लग पड़ती है, अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ती है। आज अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय बैठता है और अभी अभी गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। देह का अटैचमेंट आया या नहीं आया? हैं? आ गया। बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हो गई, क्योंकि बुद्धि में बैठता ही नहीं कि निराकार बाप, आत्माओं का बाप कोई और में भी आ सकता है। वो क्या समझता है? कृष्ण की सोल ब्रह्मा की आत्मा क्या समझती है? भगवान की आत्मा किस में आती है? है? मेरे में आती है, मैं गीता का भगवान हूं। तो बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हुआ या निश्चय बुद्धि हुआ? अनिश्चय बुद्धि हो गई, इसलिए बोला कि जो पतित दुनिया बन जाती है, गड्ढे में सारी दुनिया चली जाती है, पाप पंख में डूब जाती है, विकारों की दलदल में सारी दुनिया डूब जाती है, उस सारी दुनिया का जो विराट रूप दिखाया जाता है, जिसमें देवताएं भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और कलयुग के शूद्र भी हैं, पांव समान, उस विराट रूप 500-700 करोड़ दुनिया का सबसे ऊंचा जो अंग दिखाया जाता है, क्या है? चोटी। वो चोटी कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप। उसे पकड़ के खींचता हूं अपनी ओर। पकड़ के अपनी ओर खींचने का मतलब क्या हुआ? उस आत्मा को आप समान बनाता हूँ, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता हूँ। दुनिया में जितने भी बाप हुए हैं, भारत में राजाओं की हिस्ट्री देख लो, उन भारतीय राजाओं ने अपने कौन से बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी राजाई की दी? बड़े बच्चों को। ये परंपरा किसने डाली है? हाँ, ये परंपरा बड़े बच्चे को प्रॉपर्टी देने की परंपरा ऊंचे से ऊंचे भगवंत बाप ने डाली है। वो जब आता है तो उसका बड़े से बड़ा बच्चा कौन है? शिवशंकर। शिवशंकर तो ये भक्ति मार्ग में नाम मिलाई दिया है। दो आत्माएं मिली हुई होती है क्या पहले से है? हाँ, प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता। 500-700 करोड़ जो मनुष्यों की प्रजा है, सबका पिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या ग्रेट फादर्स हैं? धर्म पिता हैं। महान धर्म पिताएं हैं या नहीं? अरे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट महान धर्म पिताएं हैं या नहीं है? वो ग्रेट हैं। फिर उनसे भी ऊंचा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ग्रेट से भी ग्रेट कौन हुआ? प्रजापिता। वो हुआ ग्रेट ग्रैंडफादर। वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं कि बाप का वर्षा बच्चों को मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर जिसे दादे कहा जाता है, दादे का वर्षा जरूर मिलता है। तो हम सब क्या हैं? हैं यज्ञ के आदि में 36-37 में हम बच्चे मौजूद थे या नहीं थे? ब्राह्मणों के रूप में थे। उस समय वो शिव बाप जिसमें आया, जिस तन में भी आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो जिसमें पहले पहले आया ज्ञान सुनाने के लिए, वो क्या हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा हुआ। उसका बच्चा ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मणों की दुनिया को संभालने वाला दादा लेखराज ब्रह्मा हुआ। हुआ या नहीं है? हुआ। फिर 69 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, तो उसी समय उसी वर्ष में वो यज्ञ के आदि वाली राम बाप वाली आत्मा जिसे बोला राम फेल हो गया, वो दोबारा जन्म लेकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में शरण लेता है या नहीं लेता है? आता है ना, है? आता है। तो ब्रह्मा का बच्चा हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा कुमार हुआ या नहीं हुआ? और 36-37 में जो देहधारी था वो ग्रैंडफादर हुआ या नहीं हुआ? है, ग्रैंडफादर हुआ। जैसे बाप के लिए वैसे बच्चों के लिए। जो भी रुद्रमाला के बच्चे हैं, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के भांति हैं, कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम क्यों पड़ा? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं, है शंकर ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि शंकर याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ है। अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, उसका ज्ञान यज्ञ नहीं है। वही आत्मा जब संपन्न बनती है और संपन्न बनने पर कालों का काल महाकाल रौद्र रूप धारण करती है, जिस रौद्र यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होती है, सारी दुनिया की आहुति लगती है, तब उसका नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है अविनाशी, जिसका बाप यज्ञ कुंड का पिता शंकर संपूर्ण स्टेज में माना जाता है, जिसको कहा है शिव बाबा, जो बोला है हेवनली गॉड फादर की वाणी में ब्रह्मा द्वारा, क्या बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, दुनिया की कोई भी चीज इस सृष्टि पर कायम नहीं, जो एक शिव बाबा कायम है वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब संपन्न स्टेज को धारण हुआ, प्राप्त हुआ, जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ गई, तो साबित हो गया कि ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है। सतयुग में भी इस यज्ञ कुंड में अपने को स्वाहा करने वाली आत्माएं देवताओं के रूप में, ज्ञान यज्ञ के सार के रूप में अपने स्वरूप में स्थिर रहती हैं या नहीं रहती हैं? है? तो ज्ञान यज्ञ कुंड अविनाशी सतयुग में रहा या खत्म हो गया? है? रहा, सार रूप में रहा, त्रेता में भी सार रूप में रहता है। द्वापर युग आया द्वैतवादी धर्म पिताओं के द्वारा, तो उस समय भी कहते हैं वेदवाणी बनी, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, ब्रह्मा नामधारियों में बड़ा ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म, वही परम ब्रह्म वाली आत्मा जिसे शिव बाबा का टाइटल मिलता है, वही आत्मा त्रेता के अंत में वेद का रचयिता बनती है, जिसे वेद व्यास कहा जाता है। उस वेद का ही प्रारूप है श्रीमद् भगवत गीता, वेदों की आदि रचना। वो भगवत गीता भी उसमें लिखा है व्यास प्रसादा, वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो देखो वेदों के बाद उन वेदों की ऋचाओं को समझने समझाने के लिए उनका विस्तार किया गया, व्याख्या की गई आरण्यक के रूप में। आरण्यक बने, शतपथ ब्राह्मण आदि बने, फिर उनकी व्याख्या हुई तो उपनिषद बने, और उपनिषदों की भी व्याख्या हुई तो पुराण बने, और पुराने बनने तक भी ये प्रूफ मिलता है कि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? क्या? महाभारत ऐसा बड़ा पुराण है कि कोई बड़ा कमरा की सारी अलमारियों में रख दो उसे तो भी उसकी कापियां रह जाती हैं। एक ही पुराण, फिर भागवत महापुराण। तो पुराणपंथी व्याख्याकारों में भी सबसे बड़ा व्याख्याकार कौन हुआ? व्यास हुआ, वही आत्मा। फिर वाल्मीकि के रूप में वाल्मीकि रामायण भी लिखती है संस्कृत में। राजाओं के रूप में भी जन्म लेती है। वो कौन सा राजा था जिसने विदेशी आक्रांता, जिसने सारी दुनिया को तहस नहस कर रखा था जीत करके, उसको भी भगा दिया? अलेक्जेंडर। उससे चंद्रगुप्त ने टक्कर ली। और उसका गुरु बना चाणक्य। तो चाहे ज्ञान के रूप में रत रहने वाला जिसका नाम पड़ता है, भारत में भगवान आते हैं, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, संगम में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला और ब्रॉड ड्रामा में भी देवता बनकर ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, द्वैतवादी द्वापर युग से भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, सिर्फ मन बुद्धि की ही बात नहीं, वाणी की ही बात नहीं, जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनसे जो भी कर्म करता है जन्म जन्मांतर, उन कर्मों में सदा ही विजयी होने वाला, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि इस दुनिया में एक ही आत्मा है जिसकी कभी भी युद्धों में हार नहीं हुई, सदैव विजय ही विजय हुई है। कौन है? नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में घर है, जो विष्णु को दिखाते हैं क्षीर सागर, वो आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर भी ज्ञान में रहने वाली, दृष्टि भी ज्ञान में, वृत्ति भी ज्ञान में, ज्ञानेन्द्रियां भी ज्ञान में, और जिन जन्मों में कर्मेंद्रियों से कर्म करना पड़ता है, जो कर्मेंद्रियां विकारी बनती हैं, हिंसक बनती हैं विदेशियों के प्रभाव में आने से, उन इंद्रियों से भी सदैव विजयी रहने वाला, हार खाने वाला नहीं। कलयुग में जो बोला है अपने अपने शास्त्रों में, अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है, तो रामायण किसने लिखी? है कलयुग में द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई और आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी। वो कौन सी आत्मा थी है? हाँ, रामायण लिखने वाली राम की आत्मा। अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो रामायण किसने लिखी? राम ने लिखी। वो राम वाली आत्मा कवियों में श्रेष्ठ कवि के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो जाती है और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए बोला कि वो हीरो पार्टधारी है और उस हीरो पार्टधारी को त्रिकालदर्शी बाप ही पहचानता है। 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में उसे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उस बाप की जानकारी का ज्ञान का जो वर्षा है वो ज्ञान का वर्षा देने वाला निराकार बाप एक को ही सारा वर्षा देता है या सबको देता है? है एक को ही देता है। वो एक है बाप और कृष्ण वाली आत्मा है माँ ब्रह्मा। ये प्रवृत्ति मार्ग की जोड़ी है संगम की, जो जन्म जन्मांतर बाप और बेटे का पार्ट बजाते हैं। संगम युग में राम वाली आत्मा कृष्ण का बाप है लास्ट में, और संगम के मध्य में ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा का बाप बनी या नहीं बनी? तब तो ब्रह्मा कुमार बना। ब्रह्मा कुमार टाइटल पहले था या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार टाइटल पहले था? पहले क्या टाइटल था? ब्रह्मा कुमार। सबका टाइटल पहले क्या था? ब्रह्मा कुमार। बाद में 76 के बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। तो वो ही आत्मा 76 के बाद अपने स्वरूप को पहचानती है। जो बोला है 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 है बाप का संपूर्णता वर्ष। तो 76-77 में वो राम वाली आत्मा अपने स्वरूप को पहचान जाती है कि मैं इस सृष्टि का बीज रूप बाप हूं। और ब्रह्मा वाली आत्मा क्या है ब्रॉड ड्रामा है? क्या है? पहला पत्ता, पहला बच्चा, उस बीज का, बीज रूप बाप का पहला बच्चा। फिर त्रेता में, त्रेता में जो पहला पत्ता सतयुग का नारायण है वो सतयुग के अंतिम जन्म में नीचे गिरता जाएगा या नारायण ही बना रहेगा? है नीचे गिरता है, नीचे गिरते 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 साहूकार बन जाता है बहुत बड़ा। और वो साहूकार और उसका बड़ा बच्चा राम पिता के आदि वाला, दोनों ही बाप बेटे मिलकर के सतयुग के आखिरी नारायण को इतना लोन देने से भरपूर कर देते हैं कि उसकी सारी राजाई लोन चुकाने में खत्म हो जाती है। और राम वाली आत्मा त्रेता की पहली गद्दी पर काबिज हो जाती है। तो देखो, जो संगम युग में बाप था वो बच्चा बन गया त्रेता में आके, सतयुग में जो बच्चा था वो त्रेता के आदि में बाप बन गया, वही आत्मा है द्वापर के आदि में आकर कृष्ण की आत्मा विक्रमादित्य बन जाती, और विक्रमादित्य विकारी राजा, विकारी राजा को ये अकल किसने दी कि सोमनाथ मंदिर शिवलिंग बनाओ, कोई ने अकल दी होगी ना, तो वो ही उसका बाप, वो ही उसका गुरु, क्योंकि त्रेता के अंत तक बाप और गुरु अलग अलग नहीं होते थे, वो ही बाप होता था वो ही गुरु होता था। फिर कलयुग के आदि में आ जाओ, कलयुग के आदि में कोई बड़ा राजा हुआ है? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का राजा, उसका भी कोई बाप हुआ होगा ना, द्वापर में वो आत्मा क्या थी है? बाप ही थी ना, है? थी ना, तो कलयुग में क्या बने? बच्चा बन जाती। पृथ्वीराज चौहान का कोई बाप होगा या नहीं होगा? था ना, तो वो ही आत्मा बाप बन जाती। तो चारों युगों में ये शूटिंग है संगम युग की। बोला है तुम बच्चे तीन हिस्सा सुख भोगते हो दुनिया का और एक हिस्सा दुख भोगते हो, माने सतयुग त्रेता द्वापर तीन युगों में तुम बच्चे सुखी रहते हो, ये गारंटी है। यथा राजा तथा प्रजा। उसके बाद क्या होता है? एक हिस्सा कलयुग में तुमको दुख भोगना पड़ता है, उसमें भी तुम बच्चे नंबर वार होंगे या एक जैसे होंगे, क्योंकि संगम युग में पुरुषार्थ नंबर वार करते हैं, तो ब्राह्मण में भी प्राप्ति नंबर वार होती है। तो जिन्होंने शिव बाप का कर्म अकर्म विकर्म का पूरा ज्ञान धारण किया वो आत्मा है। जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं, इसलिए वाणी में बोला है, लेकिन वो वाणी दक्षिण भाषा की कन्नर की वाणी मिली जिसमें से ये पॉइंट निकला कि कोई कोई बच्चे तो, कोई कोई बहुत नहीं, कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। तो इस सुख का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? हैं? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। सुख का रास्ता कौन बताता है? है? सुख का सागर ज्ञान का रास्ता, वो सुख का रास्ता बताता है। ज्ञान से होता है सुख, अज्ञान से होता है दुख, ज्ञान एक शिव बाप से आता है और अज्ञान अनेक देहधारी गुरुओं से आता है। तो संगम युग में जो आत्मा या उसकी सहयोगी वो आत्माएं जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाती, कोई प्रकार का दुख नहीं भोगती संगम में, वो आत्माएं चारों युगों में दुख भोगेंगी क्या? है नहीं भोगती। उनके लिए बोला है नंबर वार वो भी क्या कि कोई कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते, बाकी तुम सब बच्चे 3 हिस्सा इस सृष्टि का सुख भोगते और 1 हिस्सा दुख भोगते, और धर्म की आत्माएं आधा सुख और आधा जन्मों में दुख भोगती। क्यों क्यों? क्योंकि तुम आत्माएं निराकारी स्टेज में सबसे जास्ती टिकने में अभ्यास करती हो और धर्म की आत्माएं निराकारी स्टेज में इतनी जास्ती टिकती नहीं है, क्योंकि देहधारी देहंकारी धर्म पिताओं के बच्चे बनते हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उनसे देवान जो अनेक जन्म धारण किया है दूसरे धर्मों में रहकर वो देवान छूटता नहीं। नहीं तो गीता में तो लिखा है स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा लेकिन दूसरे का धर्म मरते मरते भी स्वीकार नहीं करना। अगर दूसरे का धर्म स्वीकार कर लिया, पर धर्म स्वीकार कर लिया, तो वो तुमको राजा बना के नहीं रखेंगे, रखेंगे नहीं, क्या बना के रखेंगे? दास दासी बना के रखेंगे। और ये शूटिंग कहाँ होती है राजा बनने की या दास दासी बनने की? रिहर्सल कहाँ होती है? है संगम युग में होती है। क्यों होती है? है कारण है कि बाबा ने बता दिया एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। यहां तक कि बोला ब्रह्मा कुमारी भी जो मत दे उसे जज करना है वो राइट है या रंग है। ब्रह्मा कुमारियां भी बोला है उनके लिए कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। मुरली में ही बोला ना, तो ब्रह्मा कुमारियों का भगत बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए नहीं बनना चाहिए? ब्रह्मा कुमारियां भी तो देहधारी है या निराकारी भगवान हो गई, शिवलिंग बन गई, देहधारी है ना। देहधारियों की मत पर चलते चलते 2500 वर्ष हमने क्या अंजाम देखा, क्या रिजल्ट आया? पतित बने या पावन बने? पतित बनते रहे, और अभी भी अपने अपने जीवन को गहराई से देखें, हम कोई देहधारी के प्रभाव में नहीं आते हैं, आते हैं। अगर देहधारी के प्रभाव में आकर के बाप के ऊपर से निश्चय टूटा अनिश्चय बुद्धि बने तो इसका मतलब जिस आत्मा की बात सुनकर के बाप के ऊपर से निश्चय टूटने लगा या बाप की बेअदबी करने लगे तो क्या अंजाम होगा? किसकी प्रजा बन गए है? अरे जिसकी बात सुनकर हम बाप को भूल गए, बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बन गए, हम उसकी प्रजा बन गए, प्रभावित हो गए। प्रभावित माना प्रजा। इसलिए बोला अगर एक बार अंजाम कर लिया, समाज के सामने भी अंजाम कर लिया, वो तो सेवा फील्ड में जाते हैं, आज अंजाम करते ही हमें भगवान बाप मिल गया। गवर्नमेंट के सामने भी अंजाम कर लिया, स्टाम्प पेपर पर लिखा या नहीं लिखा? लिखा है? लिखा। तो सरकार के लिए, सरकार को दिखाने के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये स्टाम्प पेपर पर लिखाया जाता है। इतना अंजाम करने के बावजूद, फिर बाप को पहचानने के बाद भी अनिश्चय आता है, तो जैसे कि बाप का बच्चा मर गया या जिंदा रहा? मर गया। ऐसे बहुत होता है। आज बाप के घर में मनुष्य आत्मा जाकर के जन्म लेती है, 9 दिन की भट्टी में पक करके, जैसे हद की दुनिया में 9 महीने पेट में पकते हैं फिर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, ऐसे ही हम बाप के घर में स्पेशल जाकर के बाप के बच्चे बने और फिर जैसे आज बोला, कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई 1 साल के बाद, कोई 6 महीने के बाद अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। बाप के घर में आना जाना ही छोड़ देते। इसलिए बाप कहते हैं कि कोई बच्चे का कनेक्शन अगर 2 महीने तक नहीं रहता है बाप के साथ, बाप की मुरली नहीं सुनता है, बाप के ब्राह्मणों के संगठन में नहीं आता है, तो बाप समझते हैं कि बच्चा मर गया। और ये सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्कर कौन सी आत्मा को चलता है? है ब्रह्मा की सोल को चलता है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा ब्राह्मण चोटी नहीं है, ब्रह्मा तो बड़ी माँ है। क्या सारी मनुष्य शक्ति ब्रह्मा से पैदा हुई है? ब्रह्मा जो वसुधा रूपी कुटुंब है उसकी माता है या पिता है? माता है। उस ब्रह्मा रूपी जो पहली रचना है मनुष्य सृष्टि की, जो माँ की क्वालिटी होती है विशेष सहन शक्ति, सारी मनुष्य सृष्टि की माता जिससे जास्ती सहन और दुनिया में किसी ने किया ही नहीं, वो ब्रह्मा परिवार की, वसुधा रूपी कुटुंब की पहली रचना है या बाद वाली रचना है? पहली रचना, और रचयिता भी कोई होगा है, वही यज्ञ के आदि में था रचयिता। जिस रचयिता को किसने पहचाना किसने नहीं पहचाना, हाँ? सन 36-37 में उस रचयिता बाप को किसने जाना? क्योंकि बाप कहते हैं आत्माओं का कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, किसके साथ आता हूँ? तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। तो तीन मूर्तियों के साथ जब आया तो मूर्तियां, मूर्त साकार को कहते हैं या निराकार को कहते हैं? जरूर कोई साकार बनने वाली तीन आत्माएं हैं जिनके द्वारा इस संसार में वो परमपिता त्रिमूर्ति शिव प्रत्यक्ष होता है, जो कहा जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, उसके मुख से अनायास क्या निकले, मेरा बेहद का बाप आ गया। और एक बार निश्चय किया, एक बार पहचाना, एक बार बाप का बच्चा बना, तो अमरनाथ का अमर बच्चा बन गया। फिर मरने की बात नहीं रहती, अनिश्चय बुद्धि बनने की बात नहीं रहती। तो बताया कि वो विराट रूप संपन्न रूप जो मंदिरों में बीज रूप में दिखाया गया, जिस बीज से सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ निकलता है और महामृत्यु के समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ उसी बीज में समा जाता है, जिसको गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति में ये सारा संसार समा जाता और सारा संसार इसी में से निकलता। जैसे हद के परिवार में देखें, दुनिया का कोई भी हद का परिवार, पहली रचना माता, दूसरी तीसरी चौथी माता भी हो सकती है, फिर बड़े बच्चे बड़े बच्ची, मझले बच्चे बच्ची, छोटे बच्चे बच्ची, पूरा परिवार कहां से जन्म लेता है? कहां से जन्म लेता है? मां से जन्म लेता, लेकिन मां के अंदर भी कहां से आता है? बाप से ही आता ना बीज। तो वो बाप एक होता है या अनेक होते हैं? है, एक बाप है तो और संतान कही जाती है क्या? और अनेक बाप हो गए तो कैसी संतान? यही इस सृष्टि की गति है, मनुष्य सृष्टि की। एक बाप के बच्चे हैं तो देवता आधा कल्प सुख में रहते हैं और वो माताएं जो विकृत बुद्धि बन जाती हैं, विचारणी बन जाती हैं, जिनके लिए बोला मुरली में ही बोला कि कोई माताएं हैं जो नरक का दरवाजा खोलकर बैठ जाती हैं, कोई माताएं स्वर्ग का दरवाजा खोलती हैं। तो नरक का दरवाजा खोलने वाली माताएं नर से प्रभावित होती हैं या नर को नारायण बनाने वाले से प्रभावित होती हैं? किससे प्रभावित होती? नर माना मनुष्यों से प्रभावित होती है। इसलिए बोला कि भारतवासियों ने, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, उन सब भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। ये मनुष्य गुरु द्वापर से आकर के जो जो जैसा जैसा सुनाते रहे, उन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया और कन्वर्ट हो गए। परंतु हम बच्चे कन्वर्ट होनी माली माता के बच्चे नहीं हैं। यज्ञ के आदि में ही जो तीन मूर्तियां थी, उनमें वो मूर्ति कौन जो निश्चय बुद्धि थी? जिस निश्चय बुद्धि माता से कृष्ण जैसी, दादा लेखराज ब्रह्मा जैसी आत्मा प्रभावित हो गई, ओम राधे के साथ ही साथ प्रभावित हो गई, बड़बोली माता से प्रभावित नहीं हुई। वो कौन थी? हैं? छोटी माँ। वो ही छोटी माँ संगम युग में कृष्ण वाली आत्मा को अपनी आत्मा का परिचय देने के, अपनी आत्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बन जाती है। दादा लेखराज वाली आत्मा को पक्का निश्चय हो जाता है कि मैं कौन सी आत्मा, सतयुग में कृष्ण बनने वाली आत्मा मैं हूं। और आत्माओं ने साक्षात्कार नहीं किए थे, इसलिए उनको निश्चय नहीं पक्का बैठता। प्रैक्टिकल में साक्षात्कार किसने किए? दादा लेखराज ब्रह्मा ने साक्षात्कार किए, इसलिए उनको पक्का निश्चय बैठ गया कि मैं ही कृष्ण की आत्मा हूं और वर्तमान युग में संगम में मुझे ब्रह्मा के रूप में, सफेद पोष के रूप में, जिस सफेद पोष का साक्षात्कार किया था उस रूप में मुझे पार्ट बजाना। तो ऐसा ही है, तो देखो वो ब्रह्मा की सोल जो सतयुग में देवता बनती है, बनती है या नहीं? और उसके भाई बंधु, भाई बहने सतयुग में देवी देवता बनते हैं या नहीं? हैं? उन देवताओं को और त्रेता के क्षत्रियों को, द्वापर के वैश्यों को भी और कलयुग के राक्षसों को भी विराट रूप में दिखाया, लेकिन संगम युग की उस ब्राह्मण चोटी को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया है? वो शिव बाबा जो साकार निराकार का पार्ट बजाता है मेल का, चोटी में काली काली चोटी और उसमें निराकार के साथ बंधी हुई बुद्धि की गांठ लगाते हैं तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। चोटी में गांठ लगाते हैं तो शिवलिंग बनता है ना, है? वो चोटी में शिवलिंग बनता है, माने चोटी के रूप में, ब्राह्मण चोटी के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा शिव समान बन जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में उसी की सोमनाथ मंदिर में पहले पहले पूजा होती है, आत्मिक रूप में हीरो पार्टधारी हीरा के रूप में और देह के रूप में है साकार लिंग के रूप में, जो साकार लिंग भी अव्यक्त मूर्ति कहा गया। मूर्ति कैसी? अव्यक्त, देखने में नहीं आती। माना लिंग तो देखने में आता है, लेकिन हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां देखने में नहीं आती। जिन इंद्रियों से मनुष्य सुख भोगता है और जहां से सुख मिलता है वो याद जरूर आता है, तो वो जो लिंग रूप है वो कर्म करता हुआ तो दिखाया, लेकिन कर्म का फल भोगने वाला नहीं है, इसलिए वो लिंग अव्यक्त मूर्ति कहा गया। परंतु उस चोटी को उड़ाए क्यों दिया भक्तों ने? है? अरे ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण है, देवताओं में पहला देवता है, क्षत्रियों में पहला क्षत्रिय है, वैश्यों में पहला वैश्य है और शूद्रों में पहला शूद्र है, फिर उसको उड़ाए क्यों दिया? बोलते हैं भाई देवताएं, अरे देवताएं हैं, उन देवताओं के पहले ब्रह्मा कहां है? ब्रह्मा रहता है कि नारायण रहता है? जो राधा कृष्ण देवताएं हैं उनको जन्म देने वाले ब्रह्मा दिखाए गए, दिखाते हैं है? नहीं दिखाते। कहा वो ब्राह्मण कहां गए? ब्राह्मण है सर्वोत्तम कुल, समझा ना? वो सर्वोत्तम कुल, सबसे उत्तम कुल चोटी हुआ ना, बाद में पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते गिरते ब्राह्मण सो देवता नीचे गिरते गिरते शूद्र बन गया। ओम शांति।